अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्देवरं जड्डं जागुदरोचि संविदधतं पट्टं वरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्धामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन् दामोदर तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणन्ति के आज के हमरा धीर समीर एट्थ डे आज के हमरा दे अष्टम दिवस निर्विघ्न संपन्न होल आज के दिन हमारा धीर समीर बंसी भट्ट राशस्थली जमुना पुलिन और गोविंद देव बनखंडी महादेव गोपीश्वर महादेव ये सब स्थान के हमारा दर्शन करे सेखानकार महात्मा वैष्णवरा सब वर्णन करे धीर समीर के बोले तुमी धीर समीर वो लोग बोले प्रेरणाथ कैन टेल The history of Dheer Samir.
Agyanatiramdasya jananjana salakya chakshurasunmilitam yena tasmai sri gurudeva namaha vanshakalpatarubhyasya situation in Nisha Sattva, always identifying with this world, with this body. But what I have heard from Shiva Gurudev, I will try to repeat that. So Dheer Samira is very near Yamuna. There also we went to Bansi Bhat. So Ras Lila is always taking place there. Ras Lila is the highest transcendental loving exchange between Sri Krishna and his most beloved gopis. Very far away from the conditions living in Kuti. But we are going there under the guidance of Sri Gurudev and senior Vaishnavas to receive the mercy of this great transcendental land of Pratibhumi. This is visiting all these pastime places, surely we will have very profound impressions which will help us in this life to very easily fix our inner object, which is to go.
Okay. Enter these transcendental pastimes, yeah, by the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga.
So
in Dhira Samira, transcendental Ras Lila always taking place. The
fragrance, the air, the breeze there is so astonished, overwhelmed by the Ras Lila of Sri Krishna and the Gopis and his gopis, that it comes to a complete standstill. Yeah? It becomes completely captivated and eternally witnesses his pastime. So the pastime place was established again at the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu by his innermost associate, Gauridas Pandit. Sri Gauridas Pandit was the younger brother of the father of the two wives of Lord Nityananda. And Sri Gauridas Pandit, he did bhajan here at the end of his manifest pastimes in this world, and also in Samadhi Mandir here in Dhira Samira. Nowadays, the deity that is worshipped there is the beloved deity of Sri Gauridas Pandit, Rai Ras Rasamas Rai, or what is the name? Maharaj. The deity was worshipped by Gauridas Pandit?
Shamrai.
Then also, Sri Jayadeva Goswami has composed in Gita Govinda a very beautiful song about Dhira Samira, which I cannot remember, but
Dhira Samure Jamuna Tire Basati Bane Banamali.
Then one of Sri Chaitanya Mahaprabhu's dear associate, Bhakreshwar Pandit, he had a disciple, Sri Guru Goswami, Gopal Goswami, Gopal Guru, also known as Gopal Guru. At the end of his life, in this world, feeling so much separation from his beloved Ishtadev, he went into unmanifest pastimes out of feeling of deep separation. At that time, his beloved disciple, Sri Jayachanda Prabhu, he was facing some difficulty in putting on Radha Kanta of the officials. They were giving him serious problems. At that time, he did not know what to do. Then in dream,
Anyone told him
that your Guru Maharaj, at present, he is...
Not Guru, Guru of Guru.
Param Guru.
Param Guru.
Bhakreshwar Pandi is there. I have seen him.
Gopal Guru.
In that kunji.
Gopal Guru is there. In that kunji.
Gopal now. Bhakreshwar Pandit.
In your book it says Gopal Guru.
Bhakreshwar Pandit is there. Na?
Gopal Guru. Gopal Guru.
In your book.
Bhakreshwar Pandit okhane chilen. Unake dekhe Gopal Guru ro Guru Bhakreshwar Pandit. Tahake kono byakti dekhechi je okhane achen. Tokhoni nake bollo. এই কি নাম যে তোমার গুরুর গুরুকে আমি দেখলাম ওখানে, তুমি যাও, তোমার সমস্যা হল হয়ে যাবে। He told that you should go there. Bakrasar Pandit, I have seen him and he will solve all your problems. And then he went and he saw that Bakrasar Pandit is there. And he chanting name, tears coming so much, hair is standing. And then he fell down on his feet and told, "Oh Prabhu, we are very unhappy. Please come to Jagannath Puri and solve all these things." "Oh, don't worry, I will not go there. I am doing bhajan here. But your all problems will be solved." Then he returned back and all problems.
Go play the
Rasasthali Vansibat. Tumi bolo. Na? Chesta kar? Tale ke bol. You have told anything?
Govinda Dev Samandh bol.
Vansibat
bolo bol.
Vansibat.
Govinda Dev Samandh bol.
Govinda Dev. Acha Govinda Dev Samandh bol. Gomatila.
Om Adhyarati Minasrasya Vyadharya
Salatya
Choksur Mitamkina Tasmai Sivyuravirama.
Pore aspe aru. Kichne
pasan. Samhaya Vatika Vikadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Bhaktaya Panchangam Kutalu Bhasya Vipadhyam.
Aru chale aspe aru.
तत्पश्चात मध्य शिक्षा निकुल भक्ति महाराज वृंदावन मध्य दर्शन करते करते गुरु गुरुदेव के कृपा जे वृंदावन आराध्य समस्त गौड़ीय সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়ের কি আরাধ্যদেব মূল আরাধ্যদেব সেই গোবিন্দদেবের দর্শনে আমরা গিয়েছিলাম। সেই গোবিন্দদেব কৃষ্ণপুত্র সাম্ব সাম্বপুত্র পর্যনাম প্রতিষ্ঠিত শ্রী বিগ্রহ কৃষ্ণের সভাবে প্রবেশ করবার পরে তিনি প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে ম্লেচ্ছ আদির আক্রমণে এই বিগ্রহ অন্যত্র স্থানান্তরিত বা লুপ্ত অবস্থায় আছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি বৃন্দাবনে এসে রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী অন্যান্য গোস্বামীগণকে আদেশ দেন যে এই সমস্ত প্রাচীন লুপ্ত তীর্থ এবং গুপ্ত বিগ্রহকে প্রকাশ করে পুনরায় বৃন্দাবনকে আবার জাগ্রত করতে হবে। এই আদেশ পেয়ে যখন শ্রী রূপ গোস্বামী তিনি গোবিন্দদেবের চিন্তার বিবরণে থাকতেন এবং তিনি দামোদর মন্দিরের সন্নিকটে ভজনস্থলীতে ভজন করতেন, সেখানে নানা প্রকার তার ভজনের গ্রন্থ ইত্যাদি রচনা করেছেন এবং সেখান থেকে প্রত্যহ তিনি বৃন্দাবনে পঞ্চদশী পরিক্রমা আদি করতেন। সর্বদা তিনি মহাপ্রভুর সেই আদেশকে স্মরণ করে তিনি সবসময় হা গোবিন্দদেব গোবিন্দদেব বলে সবসময় অযোধ্যায় ক্রন্দন করতেন। এমন সময় পরিক্রমা করছেন, পরিক্রমা মার্গের মধ্যে তিনি একটি বৃক্ষ তলে বসে সেই গোবিন্দদেবকে স্মরণ করে তিনি যখন অযোধ্যায় ক্রন্দন করছেন, কিছুক্ষণ পরে একটি ছোট্ট বালক সে এসে জিজ্ঞাসা করলো, "বাবা, তুমি এত কাঁদো কেন? তোমার কান্না এত কি?" তখন তিনি প্রথমে উপেক্ষা করলেন, ছোট বালক বলে পরবর্তীকালে তিনি তাকে সমস্ত কথা তার জানালেন।
এইখানে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। কোথায় না তিনি মাথা ধরে নিয়ে গেলেন গোমাটিলা, সেই গোমাটিলার নিকটে সেখানে একটি প্রত্যহ থাকিয়েছে। সকালের সময় এসে রোজ সেখানে দুগ্ধ সিঞ্চন করে, নিজন সেই দুগ্ধ সেখানে তার উপরে সিঞ্চন করে। তখন সেখানে এই কথা বলেই তিনি সেখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। পরবর্তীকালে তিনি সমস্ত ব্রজবাসীকে মহলকে ডাকলেন, সেই স্থানকে লুপ্তকে তিনি জাগ্রত করলেন, খুঁজলেন, মাটি কেড়ে দেখলেন সেখানে এই গোবিন্দদেব। গোবিন্দদেব তিনি ভগবানের মুখারবিন্দ বা মুখকমল এবং কক্ষস্থল গোপীনাথ এবং চরণকমল হচ্ছেন স্বয়ং মদনমোহন। গৌরীদের তিন ঠাকুর গোবিন্দ, গোপীনাথ এবং মদনমোহন। তখন তিনি সেই বিগ্রহ প্রকাশ করে বিশেষ ধুমধাম সহকারে তিনি সেখানে আবার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তিনি তার অন্যান্য সেবককে দিয়ে সেখানে সেবা দিয়ে চালাতে লাগলেন। তিনি প্রত্যহ পরিক্রমা এবং গ্রন্থ প্রণয়ন ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকলেন। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী খড় গোস্বামী প্রধান একজন, তিনি তার শিষ্য রাজা মানসিংহ তিনি পরবর্তীকালে তার অনুপ্রেরণায় তার আদেশে তিনি সেখানে বিশাল এক সপ্ত মন্দির, সাত মন্দির মন্দির নির্মাণ করলেন, যেটি আগ্রা এবং দিল্লি থেকে তার বাকি দেখা যেত। তখন মুসলমান পিরিয়ড, মুসলমানের রাজত্বকালে অরঙ্গজেব ইত্যাদি তারা দেখল, হিন্দু মন্দিরে এরকম ভাবে এত উজ্জ্বল আলো ইত্যাদি দেখা যাবে আমরা এবার সহ্য করতে পারব না। তিনি সেই সমস্ত কামার ইত্যাদি দিয়ে চারটি মন্দিরকে ধ্বংস করলেন এবং দিল্লিতে নানা কাজের জন্য সেখান থেকে চলে গেলেন। অন্য অন্য সমস্ত আর ভগবানকে ভাঙতে পারলেন না। এই সমস্ত লীলা হয়েছে। সেই বর্তমান বিগ্রহ গোবিন্দদেব তিনি এখন জয় করে বিরাজমান এবং মুসলমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সমস্ত গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, দামোদর, রাধামাধব ইত্যাদি সমস্ত গোকুলানন্দ এবং ইত্যাদি সমস্ত বিগ্রহ তারা এখন জয়পুরে সেবায় তারা আছেন, জয়পুরে সেবা গ্রহণ করছেন, রাজমহল ইত্যাদি। আমাদের রূপগোস্বাই মা একটি সুন্দর শ্লোক রচনা করেছেন গোবিন্দদেব সম্বন্ধে। সেখানে ভক্তিবীর ঠাকুর তার কীর্তনে সেই রচনা করেছেন বঙ্গানুবাদে। তিনি বলছেন, বন্ধু সঙ্গে যদি কব রঙ্গ পরিহাস, বন্ধু সঙ্গে যদি কব রঙ্গ পরিহাস, থাকেও বিলাস, থাকেও বিলাস, কোথায় মথুরায় কৃত রাখে সকাল। যদি গোবিন্দদেবকে কেউ দর্শন করতে চাও, গোবিন্দদেবকে যদি লাভ করতে চাও, তার সঙ্গে যদি রঙ্গ বিলাস, তার সঙ্গে যদি রাসবিলাস ইত্যাদি করতে চাও, তাহলে সেই কৃষিকৃতের সর্বিপটে সেখানে গিয়ে দেখবে তিনি গোবিন্দ কে আছেন। কথায় আছেন বলি গোবিন্দ বিগ্রহ ধরি নয়নে বঙ্কিম দৃষ্টি মুখে মন্দহাস, সেখানে বিগ্রহ গোবিন্দ বিগ্রহ রূপে তিনি ত্রিভঙ্গ প্রাণীকে এবং নয়ন বঙ্কিম দৃষ্টির দ্বারা সকলকে কৃপা বিতরণ করছেন। অধরের বংশীকার অনর্থের ওলাধার, শিখি চূড়াকে ও ভাই করুণা বিশ্বাস, অর্থাৎ তার সমস্ত রূপ বর্ণনা করে বলছেন সিদ্ধি চূড়া বংশী এইগুলো সমস্ত কিছু হরণ করেন, করে যেমন হরতি বই লুকসান সবকিছু হরণ করেন, সর্বপাপ তাপ করে সমস্ত অনর্থ সবকিছু দূর করে তিনি বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ করে দেন এবং তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নিজের সেবায় নিযুক্ত করেন। সুতরাং সেই গোবিন্দ বিগ্রহ তিনি এমনই মনোরম, এমনই চমৎকার। বৃন্দাবনে যদি কখনো যেতে হয় তাহলে সেই গোবিন্দ বিগ্রহ যথাযথ ভাবে দর্শন করতে হয়। যদি
এই কীর্তনটা কত ওখানে তো মহাত্মা এইসবগুলি বলা হয়েছে। এটা বলা হয়েছিল গোবিন্দ দেবের ওখানে?
জীবন্ধুর সঙ্গে যদি তব Oh,
Goswami is telling, don't come in Mathura Mandal. But anyhow, if you have come to Mathura, then don't come in Vrindavan. Oh, anyhow you have come to Vrindavan, then don't go to Keshi Tirtha, Keshi Ghat. Be careful more. If anyhow you have come to Keshi Ghat, then nearby there is a Govinda temple. Don't go there. Don't go. If you go, your all enjoyment of all your wife, son, daughter, family life will be spoiled forever. Surely. Don't believe this crooked Krishna. His eyes is crooked, his sight is crooked, his everything is crooked, his gopis are crooked, his mother is crooked, his dhan is crooked, his dear Jamuna is crooked, everything is crooked. Don't believe. If you go and take darshan, you cannot, you will never return to your home. Not Santa.
Maharaj, Sabai return ticket getting yesterday. Sabai return ticket getting
yesterday. Oh. Then your return ticket will be lost. His crooked sight.
Crooked glance.
So it will penetrate in your heart. And just that you will give up your house, everything, as playing on flute, more powerful. So don't go to Vrindavan and take the son of Govinda. Be careful, otherwise your everything will be spoiled. Rupa Goswami has told that if you want to have a bhakta, you should want to be a bhakta. Oh, surely you should go to Vrindavan and take the son of Govinda. Perhaps you have taken the son of Govinda Dev? Oh no. That Govinda Dev has gone to Jaipur. His Pratibhu Vigraha is there. No harm. But you have taken darshan. Also, Jadeva Goswami for Dhir Samir. He has written in his Git Govinda, Dhir Samire, Jamuna Tire, Pasati Bane, Banwali. In Dhir Samir, where air also stopped by seeing Ras, no movement at all. At that time, he was looking, stopping his
movement.
So, where it is Dhir Samir? Jayadev, what he has told in his poetry, that kunj is there in Dhir Samir. You should sing that song. You are lucky to hear all these things and to go and take darshan of Govindiji and all Dhir Samir, Gopishwar Mahadev especially.
গোপেশ্বরের কেউ কথা তুমি বলেছ গোপীশ্বর মহাদেবের
গোপীশ্বর মহাদেবের সঙ্গে ওইখানে বলা হয়েছিল বংশী বটে।
কে বলেছে?
আশ্রম মহারাজ বলেছিল। তারপরে রসানন্দ একটু বলেছে।
তুমি একটু বলো তো,
কে
এখন এখন সংক্ষেপে একটু বলে।
নিকুঞ্জ মন মহাতি Thank you.
मन को सरस बनाना चाहते हैं, यदि और यदि कृष्ण के लीला विलास को जानने की इच्छा हो तो जयदेव जी कहते हैं मेरी इस पदावली को श्रवण करो। सचमुच में जयदेव की इस गीत गोविंद को महाप्रभु जी श्रवण करके भाव विभोर हो जाया कर। अभी जो कीर्तन इन्होंने गाया इसका भाव गंभीर इतना है कि सभा में नहीं कहा जा सकता, इतना गंभीर है। किंतु रस में डूबने के लिए ये सब जानना नितांत आवश्यक है समझ करके हमने गीत गोविंद की व्याख्या के सहित प्रकाशन किया है। अधिक जानने की हो तो मन को सरस करने की इच्छा हो तो गोविंद के अधिकारी बन करके तब बिना अधिकारी हो करके मत छुओ पुस्तक। हम लोग गोपीश्वर महादेव के यहाँ गए थे, दर्शन किया। वृंदावन में प्रवेश के लिए जब तक कि गोपीश्वर महादेव का की कृपा न हो कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। कृष्ण ने और गोपियों ने कृष्ण को यह वरदान दिया था। अभी तीर्थ महाराज संक्षेप में आप लोगों को गोपीश्वर महादेव के संबंध में कुछ बतलाएंगे।
क्योंकि इसलिए पीछे परिहार में बोले हे गोपियों तुम लोग धर्म उनका तो कोई दोष नहीं है, और जहां उन पर छोड़ करके केवल भौतिक संबंध लेकर के ये मेरे पति है, ये मैं उनकी पत्नी हूँ, पति पत्नी का संबंध यही मेरा धन संसार, यही मेरा पुत्र परिवार, भौतिक संबंध लेकर के विषय वासना में प्रेम किए हैं, इससे पुरुष का संबंध केवल विषय वासना की तृप्ति के लिए, वहां परम अधर्म है। जहां भगवान के साथ संबंध नहीं, जहां भगवान का भजन नहीं, कृष्ण आराधना नहीं, प्राण के साथ संबंध नहीं, वो तो परम अधर्म है। स्त्रियां यदि अपने पति को छोड़ करके पुरुष से संबंध रखता है तो उससे असंग अजस दुर्ज निंदा और अतृप्ति का सभी प्रकार का अन्याय अधर्म आ जाता है। इसलिए स्त्रियों को भले ही पति चाहे जैसे भी हो जाए, निर्धन हो, गरीब हो, दुखी हो, बीमार हो, चाहे कोई भी हो, साथ में रहना स्त्रियों का कर्तव्य होता है। इस प्रकार भगवान कहते हुए बोले कि हे गोपियों, तुम लोग घर में लौट जा, मेरी कथाओं को सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना, चिंतन करना, इससे जितना सान्निध्य होगा निकट में रह करके नहीं होगा, इसलिए घर में लौट जा। इस तरह से बड़े हर्ष परिहास कर ली और प्रसाद श्याम सुंदर शेखर रस विलासी रस का आस्वादन करने के लिए गोपियों के साथ में हर्ष प्रयास किया। अब गोपियां तो संख्या में कम नहीं है, 100 करोड़, अब उनके ग्रुप की संख्या बताई गई है 16,000। अब 16,000 गोपियों के जो ग्रुप है, उन ग्रुपों में अब सब तरह की व्याख्या है, जहां माधा मुग्धा प्रगल्भा और धीरा अधीरा धीरा धीरा सब प्रकार की है, तो उसमें तो सभी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। पहले माधा के मुग्धा वाली गोपियां कहने लगी है, हे कृष्ण हे प्रार्थना, नारायण जैसे अपने सनातन जनों की रक्षा करते हैं, उनको कभी छोड़ते नहीं, ऐसे तुम भी हमें मत छोड़ो, हमारी सनातन बना करके रख दो और सारी बातें कही। तो मुद्दा वाली तो बोल दी, अब मुद्दा वाली और कुछ आगे बढ़ करके बोली, हे गुरु ठाकुर, तुम तो हमारे उपदेशक हो और हमें बराबर उपदेश दिए हो, अब पहले किसकी पूजा करो, गुरु की पूजा, इसके बाद भगवान की पूजा, ठीक घर संसार की। बोले घर संसार में तो हम पड़े हुए हैं, कौन सा दिन नहीं है जो खाना नहीं किया और किसको नहीं किया, हम तो खुद सेवा कर रहे हैं, अब गुरु की सेवा, भगवान की सेवा करो, फिर उसके बाद दे दो। तो इस तरह से गोपी आते हैं, फिर कोई कहती है, हे गुरु ठाकुर, अब आपने तो बराबर उपदेश दे दिया, आप प्राणपति की अनुमति सब व्यक्ता सुना दी, आप प्राणपति की सेवा करूं या देहपति की सेवा करूं, देहपति समाप्त हो जाए तो उनके मुंह में अग्नि प्रदान करते हैं, बुखार नहीं करते हैं, अब उसके साथ कोई संबंध नहीं, कोई प्रति नहीं, कोई भेद नहीं, आप प्राणपति के साथ जहां नित्य संबंध है, अब तुम्हारे साथ हम लोग संबंध जोड़े तो इसमें कौन सा दोष होगा। तो इस तरह से और गोपियां इस तरह से कहने लगी, एक नहीं होता है, भगवान कहते हैं
I think that you have heard there.
Not like this.
Huh?
Not like this.
Yeah. Oh, you? Where? In brief.
So, Sri Krishna explained very nicely the pastime of Vamshivad. So, Sri Krishna, he actually saw that on the eastern horizon, the moon was rising. And seeing this beautiful moon, and the moon was actually shedding the red light, actually the pink rays of the moon, and unbroken disk of the moon appeared like the round face, Mukhamandala of Srimati Radhika. So seeing this beautiful moon, and which resembles Srimati Radhika's face, Sri Krishna desired to perform the Rasa Leela. So therefore, Sri Krishna, he played actually the flute song, and in that he uttered the Kling Bija, Kama Bija. Hearing that flute song, all the gopis, they actually came came running to that place, to the Bhakshibad. When they came running to Bhakshibad, Krishna asked them, that why you have come, you are the chess woman, and you should follow the Loka Dharma, you should follow the traditions, family traditions, and you are from chess families, respectable, extraordinary families. So therefore, why you have come here in the dead of night? And this night is very dangerous. Also, it may be that there are some wild animals, ferocious animals, who may be here, and they may cause disturbance to you. Also, you are married to your husband. So, woman should not forsake her husband, even if he is lame, blind, or any condition poor, one should not, woman should never abandon her husband. So, in this way, he began to joke with the gopis. So, that time the gopis told that you actually called us. There are many, actually 10 million gopis came there. But among the 10 million gopis, there were 16,000 different groups. So, there were Buddha and other types of gopis. So Mukta Gopis told that actually you called us, so therefore we have come here. So in this way the Gopis told that because of attraction to your true song, we have come here. So in this way, this Rasalila pastime is the crest jewel of all the pastimes. Now Shankarji, he had actually desired, he was in Kailash and he wants to see this Rasalila pastime. So therefore, he wants to enter into Vrindavan. But on the Vrindavan gate, it was stopped by the Parichayika Gopis. The guardian Gopis, they stopped him. And but Shankar is not very easy to pacify. Immediately he approached, he began to perform austerities to pacify, to actually satisfy, propitiate Purnamasi Devi. And Purnamasi Devi was pleased with him. Yoga Maya Purnamasi Devi was pleased with him and said, what is your desire? Shankar said that I want to see the Rasalila. So Purnamasi Devi said, she grabbed his hand and dipped him in the Brahmakunda. When Shankarji was dipped in the Brahmakunda, he emerged out of it as a gopi. And then Purnamasi Devi told him, now you should sit in the northeast kunja of Rasalila and you should watch this Rasalila. So Shankarji sat there, but that day Krishna told, and gopis told that today I am not experiencing happiness in the Rasalila. So it seems that some vijayatiya person, some person with incompatible food has entered our Rasalila. The gopis began to serve the entire puja and they saw that Shankarji was sitting in the corner there in the form of Gopishwar. He was in the form of a gopi. So gopis inquired from him, inquired from her that, oh, what is the name? What is your name? What village you belong to? Who's your mother? Who's your father? Who's your husband? What's the name of your in-laws? So many questions they asked from her, but Gopishwar could not reply. Because Purnamasi Devi had not described his identity to him. So therefore, all the gopis became angry and they began to punch him. And his cheeks, her cheeks actually became full like reddish. So that time, Gopishwar began to weep. So that time, Purnamasi appeared there and she told Sri Krishna that she is the recipient of my mercy. So therefore, she is actually Shankar Bholana. So you should give some mercy to her. So then, Krishna told the gopis that you should give her mercy. And then it was decided that Shankarji will guard the northeast corner, Ishan Court of Rasalila Mandal, and he will prohibit unqualified persons from entering into Rasalila and he will grant entry to the persons who have been qualified and have taken shelter of Rasi Vaishnava like our Gurudev to enter into Rasalila.
Brihat Bhagavatamritam. Brahma is telling, Brahma ji कह रहे हैं, पहले भी उन्होंने कुछ प्रार्थना की है, ये वृंदावन के संबंध में सुना, कैसा वृंदावन है, जहां पर गोपियों का के साथ में कृष्ण ने रास किया, सारी ऋतुओं के फूल दिन और रात के सभी फूल खिल गए, भौरे गुंजार करने लगे और कृष्ण ने बंसी कैसे बजाई, उस वृंदावन में सारी गोपियां आई, शंकर जी भी आए, देखना चाहते थे रास, गोपियों ने उनको रोक दिया था वृंदावन के दरवाजे पर ही, उन्होंने कहा जी कैसे हम रास देख सकेंगे, न जब पौर्णिमासी जी की तुम सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। तो बहुत दिनों तक उनकी आराधना की, आराधना के पास पश्चात जोग माया प्रकटित हुई। क्या चाहते हो? तो हम रासलीला दर्शन करना चाहिए। बस उनका हाथ पकड़ करके जबरदस्ती ब्रह्म कुंड में डुबा दिया, हाथ पकड़ करके डुबाया और वो गोपी रूप में उतर। जब ऊपर उठे गोपी रूप, तुम यहीं पर बैठो, किंतु वंश गोपी के घर में तो जन्म हुआ नहीं, किसी गोप के साथ में शादी हुई नहीं, पति है नहीं, सास ससुर ससुर भी नहीं है, कोई ग्राम जहां पर उनका जन्म है वो भी तो है नहीं। गोपियों ने पूछा, तुम्हारे पति का खसम का नाम क्या है? विवाह हुआ हो तो तब तो बतलाए, नहीं बतला सके। जब तुम्हारे पति का नाम क्या है? ओ कौन गांव की रहने वाली है? तुम्हारे सास ससुर कौन है? कुछ नहीं बतला सकते। तब उन्होंने गुलचों से मार करके माल पुआ जैसा उनका गाल फुला दिया। इतने में वो रोने लगे, जोग माया जी आई और बोली, हमारा कृपा पात्र है, आप लोग कृपा कीजिए। तब कृष्ण और गोपियों ने उन पर कृपा किया। तब कृष्ण ने वरदान किया, जो कोई वृंदावन में प्रवेश करके हमारी लीलाओं को दर्शन करना चाहता है उसको तुम कृपा करके अधिकार देना और अनाधिकारियों को दूर रखना। ऐसे वृंदावन में तदभूरि भाग्यमीहा जन्म की मा पटव्यम जज गोकुले पी कतमंग्र जजोभिषेकम जजीवित्यंतु निखिलं भगवान मुकुंद सद्या विजत पदर जह सुतुर मेम मिज्ञम। ब्रह्मा जी का ओहो, श्रुतियां भी जिनके चरण की धूलि को आज तक नहीं ढूंढ पा रही हैं, वो मुकुंद, मुकुंद के चरणों की आज भी श्रुतियां ढूंढ रही है चरण की धूलि को। गोविंद मुकुंद कौन? मुकुंद जिनके जीवन प्राण धन सब कुछ है, वे ब्रजवासी और उनमें से भी विशेष करके गोपियों, इनमें किसी भी गोकुलवासियों की चरणों की धूलि मुझे मिल जाए, वो धूलि मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, मेरा जन्म जन्म सफल हो जाएगा। पहले श्लोक में, इससे पूर्व वाले श्लोक में उन्होंने प्रार्थना की थी, हे नाथ तदस्तु मे नाथ सभूरि भागु भवे अत्र वा नत्र तु वा चिरस्थम जेनाम एको अपि भवज्जनानां भूत्वा निसेवेतोपादपल्लव। हे नाथ, इस जन्म में हो अथवा दूसरे जन्म में हो अथवा पशु पक्षी कीट इत्यादि में, किसी जन्म में भी मेरा सौभाग्य हो कि आपके दासों में से एक दास हो जाऊं और आपकी सेवा करूं, तो उस समय मैं किस लिए उसके लिए इस श्लोक में कह रहे हैं। इस लोक में या गोकुल वन में किसी भी जन्म में, तृण गुल्म लता इत्यादि के निकृष्ट जन्म में भी मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगा कि गोपियों की ब्रज गोकुल वासियों के किसी के चरण की धूलि हमारे सिर में लग जाए। विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, गोकुले की पहले ब्रह्मा जी ने सोचा यदि किसी प्रकार से मेरा जन्म वृंदावन में हो जाता तो बहुत ही सहज ही वह सौभाग्य मिल जाता गोपियों की चरण धूलि का या ब्रजवासियों का। कृष्ण ने कहा ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या या कौन सा ऐसा कार्य किया है जो वृंदावन में तुम्हारा जन्म होगा नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं गोकुलेति, गोकुल में भी हमारा जन्म हो जाए, कैसा जन्म हो जाए, वहां गोकुल में नंद बाबा इत्यादि के घरों में जो जमदारनिया टट्टी फेंकने वाली होती हैं, टट्टी फेंकने के बाद में जब घर में लौटती हैं तो पत्थर पर अपने पैरों को रगड़ती हैं साफ करने के लिए, वो पत्थर भी यदि मैं हो जाऊं जिस पर कि वो जमदारनिया पत्थर रगड़ करके साफ करें तो भी मेरा जीवन सफल हो जाएगा, ऐसा ये वृंदावन धाम है। तो इसके द्वारा भगवान के भक्तों से संबंधित किसी भी जन्म को प्राप्त करके प्रचुर रूप में भगवान की सेवा संभव पर हो सकती है। यहां पर उद्धव जी के और ब्रह्मा जी के स्तुतियों में कुछ पार्थक्य है। उद्धव जी ने भी कहा आसामहो चरण रेण जुसाम हम श्याम वृंदावने किमप गुलमलतौ सदीना जत दुस्तजं स्वजन आर्य पथं च हित्वा भेगे मुकुंद पदमे वंदे नंद ब्रज स्त्रीनां पाद रेणुम अभिघ्नश जासां हरि कथा उद्गीत पुनात। ये कहना है कि गोकुलवासी किसी एक भी की चरण हमको धूली मिल जाए, और उद्धव जी प्रार्थना करते हैं कि गोपियों में गोपियों की चरण धूली, और उस गोपियों में भी रेणु एक वचन कहा गया किसकी चरण धूली, ओ राधिका जी की स्पेशल रूप में राधिका जी की चरण धूली को वो चाहते हैं। यही दोनों प्रार्थनाओं में अंतर है। यदि कोई कहे या कृष्ण ही कहे अजी आप तो ब्रह्मा हैं सत्यलोक में रहते हैं, उस लोक को और इतनी बड़ी ऊंची पदवी को प्राप्त करके गोकुल में जन्म ग्रहण करने पर आपको क्या मिलेगा, मिलेगा क्या, वहां पर तो इतने जितने देवता हैं सबकी आपकी आराधना करते हैं, यहां पर क्या मिलेगा। उत्तर में कह रहे हैं मुझे ब्रह्म जन्म इत्यादि की जरूरत नहीं है, वहां जन्म होने से गोकुल वासियों में से किसी की पदरजी द्वारा दीपक अभिषिक्त हुआ जा सकता है, ब्रह्मलोक में तो गोपियां नहीं जाएंगी अतः उनके चरणों से रज से वह अभिषिक्त नहीं होगा, इसलिए मैं वृंदावन में ही चाहता हूं हमारा जन्म जे गोकुल वासियों में से किसी एक की चरण की धूली से मैं अभिषिक्त हो जाऊं। कहते अभिषेक कहने का अर्थ क्या है, परम तीर्थ स्वरूप उनकी चरण रज है, परम पवित्र है, उसमें स्नान करने से सारे तीर्थों में ही स्नान करना हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। इस तरह से आपके चरणों की सेवा का अधिकार मुझे मिलेगा। यदि कोई पूछे गोकुलवासियों की पदरज द्वारा अभिषिक्त होने के लिए तीर्ण इत्यादि जन्म की प्रार्थना क्यों कर रहे हो, कोई गोकुलवासी पुरुष स्त्री बन जाने की प्रार्थना क्यों नहीं करते, ये मेरे लिए संभव नहीं है, संभव नहीं है। समस्त ब्रह्मा को समस्त प्रकार के उपदेशों को देने वाली श्रुतियां हैं, श्रुतियां उनकी गुरु हैं ब्रह्मा जी, जब श्रुतियां ही उनके चरण की धूली को ढूंढ रही है तो हमारे लिए ये कष्ट संभव है, इसलिए हमारे लिए ऐसा संभव नहीं है। आ भगवान विशेषता समस्त ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य कारुण्य इत्यादि संपूर्ण गुणों की प्रचुरता महिमा को प्रकाश माने कृष्ण में समस्त ऐश्वर्य सौंदर्य माधुर्य कारुण्य इत्यादि गुण है। इसलिए भगवान मुकुंद ही समस्त गोकुल वासियों को परम सुख देने के कारण उनके जीवन स्वरूप हैं। भावार्थ क्या ब्रजवासियों का जीवन जीवन कैसा है कृष्णमय है। उनका समस्त समय सारी क्रियाएं बाहर और भीतर से सब समय वो कृष्णमय कृष्णमय है। इसलिए श्रुतियों के का मैं शिष्य हूं इसलिए श्रुतियों के अगम्य मनोरथ जो दुर्लभ वस्तु मेरे लिए कैसे संभव है। इसलिए मैं गोपियों का क्या जन्म या गोकुल में जन्म में प्रार्थना नहीं करता हूं अपितु महारोग ग्रस्त अत्यंत कृपण दरिद्र व्यक्ति यदि साम्राज्य की अभिलाषा करे तो वो लोक समाज में उसकी हंसी होती है। इस प्रकार से जैसा मैं यदि बरचाऊं गोकुलवासी कोई होकर के जन्म ग्रहण करूं तो मेरा उपहास होगा। इसलिए तीर्ण लता गुल्म होकर के ही जन्म लेने की प्रार्थना कर रहे हैं।
হবে না সব ফিরে আসলে পরে যদি ওনারা চান ভোর ভোর না পুষ্পাঞ্জলি মনে দেবার
Therefore, Shankar had developed a dream. He had heard also how on the night of Rasleela, all the different varieties of flowers fully blossomed, even at night. The bees provided a nice background. And Krishna called the gopis by his flute sound. When Shankar ran there, the gopis checked him.
Tomorrow,
and he asked them how it is in Rasleela.
পরিক্রমা উইল গো টু সো মেনি প্লেসেস
অফার
ইভিনিং কমিং পারহ্যাপস উই ক্যান ডু ভেরি শর্ট ইন মর্নিং বিফোর লিভিং Only if we make announcements and we tell everyone to come, or we can do an evening, whatever you
want.
It is very difficult because everyone will come back very late tomorrow. It will be very late tomorrow, but we will have to do an evening.
It will be in morning, little Arti.
You can look at that day before about 5.
So Krishna gave him the blessing that he may stand at the entrance of Rasleela.
You can speak something in evening.
Evening we will do program only for Siddhar Maharaj. Glorification.
Therefore Lord Ramaji, he prayed, Tad Puri Bhagavan, Kajanma, Tad Puri Bhagavan, Tad Puri Bhagavan, Tad Puri Bhagavan, Tad Puri Bhagavan,
Better in evening, okay.
Ramaji prayed, What to speak of me, even the personified Vedas, the Shrutis, are also looking for the Futas of Sri Krishna and the Gopis that they cannot find. Who are the Brijvasis? The Brijvasis are those persons whom Mukunda is their very life and soul. Krishna belongs to the Brijvasis. He is their only wealth. And amongst the Brijvasis, the Gopis are especially so. Therefore, Brahmaji said, if I could get the Futas of the Gopis, my life would be most successful. Then in his next prayer, he prayed, then ask the Asuna and Buriba. Oh Bhagwan, if in this birth, or in the next birth, or in the birth after that, I could appear as even an animal or an insect in this Brajmandal, if I could become the servant of your servant's servant, then I may have a chance for the service of the Lord. Then we prayed in this world, what to speak of Gokul, Goloka Vrindavan, if in this world I could appear even in a very low form of life, such as a tree or a shrub, then I could achieve the full task of the gopis. Therefore, Vishnu Chakravarti Thakur, in his commentary, says, Brahmaji was thinking, in Vrindavan, Brahmaji is thinking, and maybe he is asking Krishna, oh, in Vrindavan, I can easily get the chance of getting the dust of the foot, the feet of the gopis. But Krishna may answer, oh Brahmaji, that is not for you. You are not so qualified to appear in Vrindavan. Then Brahmaji said, maybe I can take birth in Gokul, where Krishna does his childhood lilas. And Sri Krishna Chakravarti Thakur says, what birth he prayed to take? In Nandababa's house, the low-class ladies who used to carry the stools, now it's wet toilet, flushing system, but that time it was dry system. There were those low-caste women who carried a stool from the palace of Nandababa. And after throwing the stool at a distant place, they come home and they clean their feet upon one stone. Then Brahmaji says, I hope I can take birth as one of those stones. And Guru said, just see the glories of Brajamandal. Therefore he is praying for any relationship with Vrindavan, especially with the residents of Vrindavan. If I can make some connection with the servants of Bhagavan Mukunda, then definitely I will get a chance to perform a lot of service for the Lord. Therefore there is a bit of difference between the prayers of Brahmaji and the prayers of Uddhavji. See, Uddhavji prayed, Samaho Chanarenu Jusamaham Sham Vrindavan Kimapi Natam Gurmo Sharinam. Also he prayed Bande Nanda Vrajasrinam Paravenam Abhiksam. Brahmaji prayed in a general sense for the Fuddhas and Vrijvasis. But Uddhavji, he specifically prayed, he specifically gave Nandabhas to one speck of Fuddhas on the feet of one gopi. Because one speck of Fuddhas could not be on the feet of many gopis. Therefore Uddhav was a little bit more, or a lot more one-pointed. Therefore Krishna may ask Brahmaji, you are Lord Brahma, you are the guru for all the demigods. They all worship you. Why would you ask for a low birth? What is the benefit for you? What will you achieve by taking this? Then Brahmaji replies, taking birth as Lord Brahma is not necessary. Because then I'll have to be in Brahmalok, the abode of Brahma. So in the abode of Brahma and Brahmalok, there's no gopis, therefore there's no chance of getting any food dust. Therefore birth in Brajamandal is good, because what will I get? I will get the food dust of the Brijavasis. He prayed for to have his head abhishek, means to be completely bathed by the food dust of the Brijavasis. What does abhishek mean? It means he has become completely pure. Like one takes bath in the water of all the holy theaters, one becomes purified. Therefore, he is praying that I may achieve the purification to enable me to achieve the qualification to perform service in the mood of the Brijavasis. Therefore, Bhagavan Krishna may ask again, then why would you take birth? Why would you pray to take birth as a low tree or a blade of grass? What's wrong with praying to become like in a human form, like any gopi or gopi? Then Brahmaji said, I'm afraid I am not qualified to take birth like in a human form in Brajamandal. Because Brahma is the guru of the Vedas. The Vedas come from his mouth. Therefore all the Shrutis personified are the disciples of Veda. Therefore Brahmaji prayed in his first verse. He said that even the personified Vedas cannot find the food dust of the gopis. And the personified Vedas are my disciples. So even they cannot get the one to speak of me. Then we said, for all those reasons, I am not qualified to take birth in a human form. Who are the Brijavasis? The Brijavasis are those who Vyasa Nikilam, Bhagavan Vakundas, they are Brijavasi, are completely Krishnamoy. Krishnamoy means inside, outside, they know nothing else except the service of Krishna. Therefore, for all these reasons, Brahmaji prayed to take the low birth.
Thank you.
Forget that some of my Vedas are the gurus or even Brahmaji.
ब्रह्माजी और भी प्रार्थना करने लगे, ईशम घोष निवासी नम उत्भवां किं देवराते इत्यादि प्रार्थना करने लगे। हे देव, सर्व फल स्वरूप आप से अधिक और कुछ नहीं, उतना तन में विष लगा करके आपको मारने के लिए आई, किंतु माता जैसा वेश धारण कर ली, उस वेश के कारण उतना ही नहीं, उसके वंश में बकासुर, अघासुर और जो दूसरे थे सबको ही कृष्ण ने आत्मदान किया। एक तरह से आत्मदान कर रहे, आत्मदान माने वैसे गोलोक में गति भी धात्री उचित, ये भी कृष्ण को ही अपने को देना है, इसलिए कहा। किंतु जिन गोपियों ने अपना घर, धन, बंधु, पति, प्रिय द्रव्य, प्राण, मन, पुत्र इत्यादि सब आपकी प्रीति के लिए समर्पण कर रखा है, लोक धर्म, लज्जा, आर्य धर्म सबको जलांजलि दे दी, लज्जा तक को भी जलांजलि दी, उन गोपियों को आप क्या देंगे है? आप कुछ भी देने में उनका ऋण कैसे शोधन करेंगे? यदि अपने को देंगे, ये तो पुतना इत्यादि राक्षसियों को ही दे दिया, मैं तो चिंता कर रहा हूं कि आप क्या देंगे। ब्रह्मा जी के मन में, शिर में नहीं आता है, बुद्धि में यथार्थ में क्या देंगे, इसलिए उनके चिर ऋणी ही रहेंगे। और अपने मुख से ही कहा उन्होंने, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।
Therefore, Brahmaji is thinking, even Putana came dressed as a mother and with poison on her breast, she tried to kill him. Because of that simple act of dressing like a mother, then what do you speak of giving Putana a place to go over Vrindavan like a mother, like a nurse? But even Krishna gave himself to demons, they were related to Putana, like Agasura and Bakasura. Since Krishna Atmadan gave himself, also Atmadan means he gave a position in his own dharma. Therefore, the gopis, they had given their life, or the Brijavasis, had given their life, their bodies, all the objects within their possessions, their relatives, family members like wives, sons and children. Even they have given up the Arja Dharma, the behavior of respectful persons, qualities like shame, shyness. They have given all these, surrendered all these to you, simply out of their affection for you and to achieve your pretty, your love. Therefore, Brahmaji, you gave such a thing to Putana, who just came as your mother. Then Brahmaji is thinking, what will I get? But Brahmaji, even though he is so intelligent, he could not conceive what he will achieve.
कल हम लोग बस से सवेरे 5 बजे निकलेंगे, खेलन वन में जाएंगे सबसे पहले, वहां पर गोपी घाट, पासी में राम घाट, राम की रासलीला स्थली, काशी में बिहार बन और निकट ही में तपोवन लौट करके अक्षय वट और फिर चीरघाट कात्यायनी देवी का दर्शन और फिर वहां से श्री वत्सवन और लौटते समय में गरुड़ गोविंद इत्यादि विशेष स्थलियों का जहां पर कि साधारण लोग नहीं जाते हैं और ये कृष्ण की विशेष लीला स्थलियां हैं, इसलिए सभी लोग वहां पर जाएंगे दर्शन करेंगे।
कल के इसे पुष्पांजलि।